तो जैसा आप जानते हैं कि आज कोई भागवत श्लोक नहीं ले रहे, क्योंकि आज इन आचार्यों पे बोलेंगे जो आज सीता जी का आविर्भाव दिवस, जाह्नवी देवी का आविर्भाव दिवस और मधु पंडित जी का तिरुभाव के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो इसलिए कोई श्लोक विशेष नहीं है आज। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सीता जी के बारे में चर्चा करेंगे, जो भगवान श्री राम की शक्ति है उनकी। तो जैसा आप सब जानते ही हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और जितने सारे अवतार हैं वो उन्हीं के विस्तार है, है ना। तो उसी प्रकार सीता देवी मूल भगवान की लादिनी शक्ति है। तो उन्हीं से जितने और भगवान की जितने भी जो सब पत्नियां हैं या वो सब राधा रानी की ही विस्तारित रूप है। जैसे कि भगवान कृष्ण से विस्तार होते हैं सारे चतुर्व्यूह नारायण रूप, राम नरसिंह इत्यादि सारे अवतार भगवान कृष्ण की विस्तार है या उनके अंश हैं। तो उसी प्रकार जितने लक्ष्मियां हैं, वैकुंठ में लक्ष्मी देवी या सीता देवी, वो सब किसके अंश हैं? राधा रानी के, क्योंकि राधा रानी मूल शक्ति तत्व है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्वा कांता सम्मोहिनी परा। तो वो सबसे श्रेष्ठ जो भगवान की जो कांता है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। और उनके विस्तारित रूप है सारे अन्य जो भगवान के कांताएं हैं। तो आज सीता जी का आविर्भाव है, तो जिस प्रकार हमारे लिए राधाष्टमी का बहुत महत्व है, उसी प्रकार जो भगवान रामचंद्र के भक्त हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां भी हमारे इस्कॉन केंद्र में जहां सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का विग्रह है, तो वहां आज अभिषेक होता है सीता जी का और महाउत्सव का महोत्सव एक भक्त लोग पालन करते हैं। तो आप तो सुने ही हैं सीता जी के बारे में अनेक बार रामायण की कथा, तो फिर भी थोड़ा संक्षेप में कुछ बताएंगे आपको। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि सीता देवी का प्रकट कैसे हुआ था। प्राकट्य किसी साधारण व्यक्ति की तरह नहीं हुआ था। जिस प्रकार राधा रानी का भी प्राकट्य वो एक कमल के फूल में यमुना नदी में प्राप्त किए थे, है ना, आपने सुना है ये विश्वभानु जी। उसी प्रकार सीता देवी का भी प्राकट्य साधारण मनुष्य की तरह नहीं था, क्योंकि वो तो भगवान की लादिनी शक्ति है। इसलिए सीता देवी कैसे प्रकट हुई थी? जब जनक महाराज, एक विशेष उत्सव था जिसमें जनक महाराज स्वयं वो हल चला रहे थे खेत में, तो शायद एक सोने के उसमें प्राप्त हुई सीता देवी। तो इस प्रकार सीता देवी का प्राकट्य हुआ, फिर जनक महाराज बहुत प्रसन्न हुए, उत्सव बनाए, और सीता देवी धीरे धीरे, मिथिला प्रदेश के राजा थे जनक महाराज। तो आज ही एक भक्त मुझे एक सुनाए लीला, मैं सुना नहीं था, कह रहे थे कि एक बार ऐसा हुआ कि सीता देवी बचपन में खेल रही थी। तो खेलते खेलते ऐसा कुछ उनका शायद खिलौना या फूल वो धनुष के पीछे जो आ गया, तो सीता देवी ने वो जो शिवजी का धनुष था उसको एक हाथ से उठा के साइड कर दिया। तो वो धनुष, जो महान धनुष जिसको कई लोग उठा नहीं पाते थे, तो उसको सीता देवी ने एक हाथ से उठा लिया। तब जनक महाराज को ये विचार आया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, इसलिए इनका विवाह के लिए मैं जो स्वयंवर करूंगा उन्हीं के साथ जो कि इस जो धनुष है शिव जी का उसको उठा पाए और उसमें वो उसको तोड़ पाए। तो इस प्रकार वहीं से उनके मन में विचार आया स्वयंवर का। और फिर आप जानते ही हैं बाद में कैसे विश्वामित्र जब भगवान राम लक्ष्मण को लेके आए तो स्वयंवर में पधारे और भगवान राम बिना कोई ज्यादा कोशिश किए या परिश्रम किए एक हाथ से उस धनुष को उठा के और फिर सीता देवी के साथ बहुत आडंबर से उनका विवाह हुआ। और साथ ही साथ बाकी जो तीन भाई हैं जो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनका भी विवाह वहीं जनकपुरी में हुआ। और बहुत सुंदर वर्णन है रामायण में कैसे पूरी बारात आती है और कैसे बहुत बहुत विशाल विवाह होता है और सब वापस अयोध्या आते हैं। लेकिन फिर अयोध्या आने के बाद क्या होता है, वो सीता देवी जो कि एकदम इतने आराम में इतने बड़े महलों में हमेशा रहती थी, वही सीता देवी जब भगवान राम को वनवास जाना पड़ा तो वो स्वयं आई। ऐसा नहीं भगवान राम ने कहा, नहीं, वो स्वयं जाना चाहिए। और इतने कष्ट में, जंगलों में, कांटों में, और इतने इतना उन्होंने तपस्या किया, वस्त्र नहीं था और कोई सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी सीता देवी राम जी के साथ आए। और फिर अनेक लीला हुई वन में। और फिर बाद में हम सब सुने ये कथा कि कैसे रावण आके सीता देवी को ले जाता है। तो साधारण तो लोग यही समझते हैं कि रावण ने सीता देवी का अपहरण किया। क्या ये सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं है। सीता देवी का नहीं, किसका अपहरण हुआ? माया सीता का। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। चैतन्य चैतन्य एक बहुत सुंदर लीला आता है, लीला का वर्णन है कि जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो वो मदुराई नाम के स्थान में आए। मदुराई आज भी आप जानते हैं तमिलनाडु में है मदुराई। तो वहां पे वो एक ब्राह्मण की महाप्रभु जहां भी जाते थे तो प्रसाद के लिए कोई ना कोई ब्राह्मण उनको अपने घर में निमंत्रण करते थे। तो वहां मदुराई में एक ब्राह्मण ने महाप्रभु को अपने घर बुलाया, तो महाप्रभु गए वहां प्रसाद लेने। लेकिन महाप्रभु देखे कुछ प्रसाद की व्यवस्था ही नहीं थी। 12-1 बजे करीब महाप्रभु प्रसाद लेते थे दोपहर के समय। तो पूछे भाई क्या बात है प्रसाद, तो जो ब्राह्मण ने उन्होंने क्या उत्तर दिया कि भाई लक्ष्मण गए हैं लेके आएंगे सब्जी फिर हम प्रसाद बनाएंगे। मतलब उनका वो रामायण में इतने मग्न थे कि उनका ये भाव था कि अभी हम लोग जंगल में, तो जब लक्ष्मण लेके आएंगे कुछ फल सब्जी इत्यादि तब सीता देवी इसको पकाएंगे। तो महाप्रभु सुनके तो बड़ा प्रसन्न हुए कि इसका बड़ा भाव है ब्राह्मण का। खैर उसके बाद तुरंत ही फिर ब्राह्मण ने रसोई करके महाप्रभु को उन्होंने प्रसाद दिया। तो महाप्रभु तो प्रसाद लिए करीब 3-4 बजे, लेकिन महाप्रभु ने देखा कि ब्राह्मण प्रसाद नहीं ले रहे। तो महाप्रभु पूछे भाई क्या बात है, आप क्यों प्रसाद नहीं ले रहे? तो ने कहा कि मेरे मन में एक बहुत बड़ा दुख है। क्या दुख है? कि सीता देवी जो जगन माता है, जो भगवान श्री राम की कांता है, वो सीता देवी को एक राक्षस, एक तुच्छ राक्षस रावण कैसे उसका अपहरण कर लिया। ये सुन के मुझे मन में बड़ा दुख हो रहा है, ऐसा कैसे संभव है? तो महाप्रभु समझाए, बोले देखो ऐसा कभी नहीं संभव है, क्योंकि सीता देवी तो भौतिक है ही नहीं, तो हम कोई भौतिक इंद्रियों से कैसे उनका स्पर्श तो कर ही नहीं सकते। तो ये ऐसा कभी नहीं था कि रावण ने सीता देवी को स्पर्श किया, नहीं, ये तो केवल माया सीता थी जिसका कि रावण ने अपहरण किया। असली सीता का कभी अपहरण नहीं हुआ, उनको तो अग्निदेव अपने साथ रख ली। खैर महाप्रभु ने बताया और ब्राह्मण को श्रद्धा था, तो महाप्रभु की बात सुन के थोड़ा मन में उनको थोड़ा सांत्वना मिला और कुछ प्रसाद लिए, फिर भी इतने संतुष्ट नहीं थे। फिर महाप्रभु, तो अगर महाप्रभु नहीं आते तो हो सकता है एक दो दिन में ब्राह्मण शरीर भी त्याग देते, क्योंकि इतना उनको दुख था। तो महाप्रभु ने अपने वचनों के द्वारा उनकी प्राणों की रक्षा करे। और फिर महाप्रभु आगे चले दक्षिण भारत में, मदुराई से फिर गए रामेश्वरम। रामेश्वरम में वो जो धनुष कोटि तीर्थ इत्यादि में स्नान किए, और वहीं पे रामेश्वरम में वो देखे कि कुछ वहां पे कुछ ब्राह्मण रामायण के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो वहां पे उन्होंने सुना कि कुछ ब्राह्मण कूर्म पुराण से कह रहे थे, क्या कह रहे थे, सीता देवी का वर्णन कर रहे थे। सीता देवी का विप्र सभा सुने तहा कूर्म पुराण तार मध्य आईला पतिव्रता उपाख्यान। तो जो पतिव्रता पतिव्रता सीता देवी का उपाख्यान कूर्म पुराण में आया, तो बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें कहते हैं पतिव्रता शिरोमणि जनक नंदिनी, आप सब बोल सकते हैं पतिव्रता शिरोमणि जनक नंदिनी जगतेर माता सीता रामेर गृहिणी। एक बार और बोलिए पतिव्रता शिरोमणि जनक नंदिनी जगतेर माता सीता रामेर गृहिणी। एक बार और पतिव्रता शिरोमणि जनक नंदिनी जगतेर माता सीता रामेर गृहिणी। तो इसमें कहते हैं कि सीता देवी कौन है ना, वो पूरी जगन की माता है, जगन माता, और पतिव्रता स्त्रियों में से सबसे वो श्रेष्ठ है, और किनकी पुत्री है वो, जनक नंदिनी। रावण देखिया सीता लोइला अग्निर शरण, रावण होइते अग्नि कोयला सीता के आवरण। तो कूर्म पुराण से पढ़ रहे हैं, बोलो क्या पढ़ रहे हैं, कि जब रावण सीता का अपहरण करने आया तो किसका अपहरण किया उन्होंने, माया सीता का, क्योंकि जो सीता देवी है वो अग्नि देव के पास चली गई। तो जब महाप्रभु ने कूर्म पुराण से सुना तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, और फिर महाप्रभु को किसकी याद आई, महाप्रभु को उस ब्राह्मण की याद आई, रामदास विप्र उनका नाम था। तो महाप्रभु ने सोचा कि मैं इसको अवश्य लेके जाऊंगा, जो कूर्म पुराण का जो श्लोक है उसको लेके मैं रामदास विप्र को सुनाऊंगा। तो उस प्रकार ऐसा कहते हैं कि जो अग्नि देवी सीता देवी को लेके कहां रखे, सीता देवी को लेके वो पार्वती जी के महल में रखे, और जो माया सीता को रावण ले गया, वो माया सीता को कहते हैं नाम वेदावती, वो जो तिरुपति जी उनके उनकी कहानी लीला में भी ये वर्णन आता है कैसे वेदावती थी जिसको कि रावण वास्तव में लेके गया था। और फिर जब रावण जब भगवान राम ने रावण की हत्या कर दी, उसके बाद जब वापस आए तो वो क्या किए, अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा एक तो छल था, उसके द्वारा क्या हुआ कि माया सीता तो वापस चल गई और असली सीता देवी को अग्नि देवी ने लौटा दिया, अग्नि देव ने लौटा दिया। तो उस प्रकार जब राम जी वापस अयोध्या आए तो किसको लेके आए, असली सीता देवी को लेके आए। तो इस प्रकार महाप्रभु सुने बड़े प्रसन्न हुए, और फिर देखिए महाप्रभु कितने भक्तवत्सल है कि तुरंत उसको, उस समय कोई फोटोकॉपी मशीन नहीं था कि महाप्रभु ने जेरॉक्स कर लिया, नहीं, हाथ से लिखवाया, हाथ से उसको लिखवाया, और जो ओरिजिनल था उसको अपने साथ लेके आए, ताकि क्यों ओरिजिनल क्यों लेके आए, ताकि वो ब्राह्मण को ज्यादा विश्वास हो, उसे यह नहीं लगे कोई नकली महाप्रभु ने अपने हाथों से लिख दिया, नहीं, इस असली जो था जो श्लोक लिखा था उसको महाप्रभु स्वयं लेके आए अपने साथ, और वापस रामेश्वरम से गए मदुराई केवल उस ब्राह्मण को ये श्लोक देने के लिए। देखिए कितने महाप्रभु भक्तवत्सल है कि एक ब्राह्मण के लिए वापस लौट के आए, कहां से, रामेश्वरम से मदुराई, और वो जो श्लोक है उसको वो ब्राह्मण को दिए, और जब ब्राह्मण ने सुना वो श्लोक को तो बहुत प्रसन्न हो गए और रोने लगे और महाप्रभु के चरणों में गिर गए, और विप्र कहे तुम्हें साक्षात श्री रघुनंदन सन्यासी रवेशे मोरे दिला दर्शन। तो विप्र क्या कहते हैं कि अब मैं समझ गया प्रभु, आप और कोई नहीं, आप कौन है, साक्षात रघुनंदन श्री राम है, और एक सन्यासी के वेश में आप मुझे दर्शन दे रहे हैं और मुझ पर कृपा कर रहे हैं। और सूर्य कहते हैं महादुख है ते मोर करिला निस्तार आजी मोर घरे भिक्षा कर अंगीकार। कहते आप मुझे महादुख से आपने मुझे मेरा उद्धार किया है, तो इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप कृपा करके मेरे घर में आप प्रसाद लीजिए। और फिर उस दिन उन्होंने बहुत बड़ा फीस्ट बनाया, क्योंकि बहुत प्रसन्न थे तो बहुत सुंदर प्रसाद बना के महाप्रभु को खिलाए, और बाद में फिर वो भी लिए प्रसाद ली। तो उस प्रकार हम देखते हैं कि इस लीला से दो चीज को हमें सीखने को मिलती है, एक तो कैसे कि जो सीता देवी का अपहरण कभी नहीं हुआ था लेकिन माया सीता का अपहरण रावण ने किया, और दूसरा बात महाप्रभु कितने भक्तवत्सल है कि एक ब्राह्मण के प्रसन्नता के लिए वो श्लोक लेके उसके पास आते हैं। तो इस प्रकार ये लीला का वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। और ऐसे कई बार महाप्रभु लीला में महाप्रभु भगवान श्री राम का रूप धारण करते हैं। एक बार जो महाप्रकाश लीला में उन्होंने किसको दर्शन दिया था, मुरारी गुप्ता को, कि मुरारी गुप्ता महाप्रभु के पार्षद थे लेकिन वास्तव में कौन थे, वो हनुमान जी। तो इसलिए महाप्रभु ने उनको भगवान राम का रूप दर्शन कराया, पूरा संपूर्ण राम दरबार, राम लक्ष्मण सीता हनुमान पूरा दर्शन उनको कराए। और इतना ही नहीं, वो मुरारी को तो कहते हैं, देखो मुरारी मुरारी गुप्ता का पीछे एक पूछ भी आ गया, क्योंकि मुरारी गुप्ता कौन है, हनुमान जी। तो जब वो महाप्रकाश लीला चल रहा था तो महाप्रभु ने उनको भगवान श्री राम का दर्शन कराया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि महाप्रभु, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए अलग अलग रूप का दर्शन महाप्रभु कराते थे भक्त के भाव के अनुसार। तो महाप्रभु कभी षडभुज रूप का दर्शन कराए, कभी श्याम सुंदर रूप का, कभी भगवान राम का, कभी वराह देव का, कभी नरसिंह देव का। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु में सारे अवतार चैतन्य महाप्रभु के अंदर है, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के अवतार नहीं है, कौन है वो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। तो ये हमने लीला सुना सीता देवी के बारे में। और अनेक रामायण, जैसे हमने कहा रामायण में तो बहुत चरित्र का वर्णन है सीता देवी का। यहां तक भी कहा जाता है कि रामायण का जो मुख्य विषय वस्तु जो कहते हैं वाल्मीकि कि वो सीता देवी का गुणगान, सीता अह चरितम महत। तो रामायण क्या है, राम जी का चरित्र तो है लेकिन विशेषतः सीता देवी का चरित्र है रामायण। और फिर बाद में, लेकिन जब सीता देवी अयोध्या आ जाती हैं, उसके बाद केवल ये एक जो कैसे राजा का आचरण होना चाहिए उसको प्रस्तुत करने के लिए भगवान राम ने क्या किया, सीता को परित्याग किया और वाल्मीकि आश्रम में जाके सीता देवी रही। वो वाल्मीकि आश्रम आज भी कानपुर के सामने बिठूर नाम का स्थान है, जहाँ पे बहुत सुंदर वाल्मीकि आश्रम है, जहाँ पे सीता देवी रही थी वाल्मीकि के साथ में, और वहीं पे लव और कुश का जन्म हुआ था। तो वास्तव में कभी राम लक्ष्मण, राम और सीता अलग नहीं हो सकते, ये तो केवल बाहरी दृष्टि से हम देख सकते हैं। जिस प्रकार राधा रानी और कृष्ण, केवल बाहरी दृष्टि से हम देखते हैं कैसे भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए और वापस नहीं आए, लेकिन हमेशा वो एक साथ ही हैं, गोपियां राधा रानी और कृष्ण। उसी प्रकार सीता राम एक ही हैं, तो कभी अलग नहीं हो सकते। केवल लीला में भगवान राम ने दिखाया और सीता देवी का उन्होंने परित्याग किया। तो ये भी एक विप्रलम्ब का भाव, क्योंकि इससे प्रेम बढ़ता है, तो इसी को प्रदर्शन करने के लिए भगवान राम ने सीता देवी का परित्याग किया। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान राम ने ऐसा क्यों किया, तो हम भगवान की लीलाओं के बारे में हम ऐसे प्रश्न नहीं कर सकते, कि भगवान वो स्वतंत्र हैं, उनको कभी हम प्रश्न नहीं कर सकते कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, नहीं। और वास्तव में जैसा जो अंतरंग कारण क्या है, कि भगवान उनका प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, विप्रलम्ब से प्रेम बढ़ जाता है, इसीलिए भगवान राम सीता से अलग हुए। और फिर बाद में हम जानते हैं कि जैसे सीता देवी भूमि की पुत्री है, भूमि देवी की, तो इसलिए वो भूमि देवी में ही प्रवेश कर गए। वास्तव में तो साकेत धाम, जैसे गोलोक धाम है आध्यात्मिक जगत में, जहां पे भगवान कृष्ण नित्य निवास करते हैं, किसके साथ, राधा रानी, सारे गोपियों, नंद महाराज, यशोदा, उसी प्रकार साकेत धाम नाम का एक स्थान है आध्यात्मिक जगत में, जहां भगवान राम हमेशा नित्य लीला करते हैं। तो सीता देवी वहां नित्य रूप में विराजमान है भगवान राम के साथ। और भगवान राम का भी, जैसा हम जानते हैं, क्या व्रत था, एक पत्नी व्रत। और भगवान राम ने भी बहुत प्रेम का प्रदर्शन किया सीता देवी के प्रति। आप जानते हैं जब वन में जब ये तथाकथित अपहरण हो गया सीता देवी का, तो उसके बाद भगवान राम कैसे सीता देवी के विरह में किस तरह वो बिल्कुल पागल के जैसे हो गए थे, हर वृक्ष को पूछ रहे थे कि आपने सीता को देखा है क्या, पक्षियों को, पशु को, सबको पूछ रहे थे कि आपने वो मृगनयनी सीता देवी को आपने देखा, कहाँ गई। तो उस प्रकार भगवान राम बिल्कुल विभोल हो गए थे विरह में। तो हम देख सकते हैं कितना प्रेम है भगवान राम को सीता देवी के प्रति। तो खैर आज हम प्रार्थना कर सकते हैं सीता देवी से कैसे, क्योंकि जिस प्रकार राधा रानी की कृपा से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है, तो उसी प्रकार सीता देवी की कृपा से हम भगवान राम के चरण के प्रति आसक्ति बढ़ा सकते हैं। और जो हरे कृष्ण महामंत्र है, प्रभुपाद जी कहते हैं एक तात्पर्य में कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हरे राम, ये सीताराम को भी संबोधित करता है, तो इसलिए महामंत्र में जब करते तो इसमें सब कुछ आ गया, तो इसमें सीताराम भी इसमें सम्मिलित है इस महामंत्र में। और फिर हम आज चर्चा करेंगे जाह्नवा माता के बारे में। तो जाह्नवा माता कौन है? नित्यानंद प्रभु की कांता, उनकी पत्नी। और दो पत्नियां थे नित्यानंद प्रभु के, श्री वसुधा और जाह्नवा देवी। और वो वास्तव में नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी हैं। तो जैसे नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, और बलराम जी की दो पत्नियों का नाम क्या है? रेवती और वारुणी। तो वही वारुणी और रेवती किसके रूप में आए? वसुधा और जाह्नवी के रूप में। लेकिन कई बार ये भी लेकिन वास्तव में अनंग मंजरी स्वयं, जो राधा रानी की छोटी बहन है, वो जाह्नवी देवी के रूप में प्रकट हुई। तो चैतन्य लीला में हम कई बार ऐसे सुनते हैं ना, दो दो व्यक्ति एक ही शरीर में आते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि कैसे रामानंद राय विशाखा भी हैं, अर्जुन सखा भी हैं। तो उस प्रकार हम यहां सुनते हैं कि जाह्नवा देवी रेवती के अंश भी हैं और अनंग मंजरी भी, दोनों उनमें सम्मिलित हैं। तो बहुत आप जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु पहले अवधूत थे, लेकिन महाप्रभु ने उनको आदेश दिया। जब महाप्रभु संन्यास लेके, महाप्रभु तो पूरी आ गए संन्यास लेके, तो महाप्रभु ने विशेष आदेश दिया नित्यानंद प्रभु को कि आप जाओ बंगाल में जाओ और प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु का बिल्कुल इच्छा नहीं था महाप्रभु से अलग होने का, लेकिन केवल आदेश पालन करके नित्यानंद प्रभु बंगाल गए प्रचार करने के लिए। और महाप्रभु ने साथ में यह भी कहा कि आप गृहस्थ आश्रम स्वीकार कीजिए। तो महाप्रभु के आदेश में उन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया और उनका विवाह जाह्नवा देवी और वसुधा से हुआ। और वास्तव में वो बहन थी दोनों, वो सारखेल क्या सूर्यदास सारखेल की कन्याएं थी, और एक ही साथ विवाह हो गया उसी दिन उनके साथ। तो इसका भी वर्णन है चैतन्य भागवत में उनके विवाह के बारे में नित्यानंद प्रभु का। और फिर नित्यानंद प्रभु, जैसे हम जानते हैं कि वो पूरे बंगाल में प्रचार करते थे, और केवल रथ यात्रा के समय वो भी, महाप्रभु ने तो वो भी मना कर दिया कि अब रथ यात्रा में मत आना, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु कभी कभी पूरी आ जाते थे महाप्रभु से मिलने के लिए। और नित्यानंद प्रभु पूरे बंगाल में प्रचार किए। और फिर जब धीरे धीरे महाप्रभु वापस अपने नित्य धाम में चले गए और नित्यानंद प्रभु भी अप्रकट हो गए, तो उसके बाद जाह्नवा माता पूरे गौड़ीय वैष्णव समाज की कौन थी? आचार्य। वो उनके लीडर बन गई जाह्नवा देवी, और सब कोई जाह्नवा देवी को बहुत सम्मान करते थे, सारे वैष्णव, क्योंकि कौन, वो नित्यानंद प्रभु की कांता है, कोई साधारण नहीं है, स्वयं अनंग मंजरी है। इसलिए सारे वैष्णव उनको बहुत आदर करते थे, सम्मान करते थे। और एक बार जाह्नवा देवी ब्रज में पधारी थी वृंदावन में, तो उस समय सारे गोस्वामी जो थे वृंदावन में, वो सब आके उनका स्वागत किए जाह्नवा देवी का, और उनको बहुत बड़ा समारोह यहाँ पे बनाया गया। इसमें वर्णन आता है भक्ति रत्नाकर, भक्ति रत्नाकर में सब लीलाओं का विस्तार में वर्णन है। तो महान यहाँ पे महोत्सव करते हैं, और जाह्नवा देवी सब वृंदावन में सारे गोस्वामी मंदिर का दर्शन करती हैं, और फिर राधा कुंड भी जाती हैं। हम देखते हैं राधा कुंड में वो है ना, जो राधा कुंड के तट पे वो जाह्नवा माता बैठक है, वहीं पे जाह्नवा माता राधा कुंड में स्नान किया करती थी, और रघुनाथ दास गोस्वामी उनसे मिले। तो इस प्रकार जाह्नवा माता को बहुत सम्मान देते थे सारे गोस्वामी और सारे वैष्णव। और भी कई सारी लीलाएं हैं, कैसे जाह्नवा देवी अपने साथ राधा रानी के विग्रहों को लेके आई। जैसे कहा जाता है कि जो मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और श्री गोविंद जी का स्थापना हुआ, साथ में राधा रानी का स्थापना उस समय नहीं हुआ था, वो जाह्नवा देवी, गोपिंदपुर है ना, ऐसे जाह्नवा देवी लेके आई थी। हाँ, इसलिए गोपिंदपुर बैठे हैं, गोपिंदपुर बहुत जानते हैं सब लीला के बारे में, मैं बस कुछ प्रयास कर रहा हूं। तो जाह्नवा देवी से राधा रानी को अपने साथ लेके आई थी उड़ीसा से, बंगाल या वहीं से, और सब जगह स्थापना करी। तो जाह्नवा देवी का बहुत विशेष स्थान है हमारे संप्रदाय में, इसलिए जो भजन है जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, उसके अंत में हम क्या कहते हैं कि श्री जाह्नवा पाद पद्म करियास नाम संकीर्तन कहे दीन कृष्णदास। तो इसलिए जाह्नवा देवी के पांच पद्मों को शरण लेके वो नाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो एक विशेष लीला जो हुई थी जिसके बारे में आप सब सुने थे, खेतुरी ग्राम महोत्सव, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वो क्या था, पहला गौर पूर्णिमा उत्सव का पालन हुआ था कहां पे, खेतुरी ग्राम में, और उनको कौन किए थे इतना बड़ा समारोह का आयोजन, नरोत्तमदास ठाकुर। नरोत्तमदास ठाकुर जैसा आप जानते हैं खेतुरी ग्राम के ही वो थे, और जब वो घर छोड़ के गए वृंदावन, फिर वहां से शिक्षा लिए वापस खेतुरी ग्राम वो आए प्रचार करने के लिए। और जो उनके जो भाई थे, उनके चाचा के पुत्र संतोष दत्त, वो भी महान भक्त बन गए नरोत्तमदास ठाकुर के। और क्योंकि वो वहां के राजा थे, इसे संतोष दत्त ने अपने सारे धनराशि को इस उत्सव में लगा दिया था। तो नरोत्तमदास ठाकुर ने महान गौर पूर्णिमा उत्सव का उन्होंने आयोजन किया। कहते हैं कई सारे उन्होंने नए घर बनाए, सबको उन्होंने निमंत्रण दिया, सारे वैष्णवों को। और तीन लोग साथ में थे, कौन कौन, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद और नरोत्तमदास ठाकुर, ये तीन एक साथ ही आए थे। और साथ में नरोत्तमदास ठाकुर मित्र जो कौन, रामचंद्र, वो भी थे। तो ये सब मिलके इस महान खेतुरी ग्राम उत्सव का आयोजन किए। और विशेष देखिए वैष्णव को क्या क्या सभ्यता है कि वो स्वयं एक एक वैष्णव को भेजे निमंत्रण देने के लिए। ऐसा नहीं कि दूत के हाथ भेज दिए सबको कि निमंत्रण देने से, हम आजकल एक ईमेल भेज देते हैं सबको, ऐसा नहीं था। वो स्वयं एक एक वैष्णव को भेजे हर एक वैष्णव के पास उनको निमंत्रण देने के लिए। और जब सब वैष्णव सुने तो उनको बड़ा सब प्रसन्न हुए, क्योंकि जब महाप्रभु प्रकट हो गए तो सारे वैष्णव बड़े दुखित थे, महाप्रभु के विरह में थे। लेकिन जब सुने कि नहीं ऐसे महान उत्सव का आयोजन हो रहा है, तो सब बड़े प्रसन्न हुए। और सब अपने अपने स्थान से, कोई नवदीप से, कोई अनेक अनेक जो जितने स्थान है श्रीहट्टे से इत्यादि, सारे वैष्णव किधर की ओर चले, खेतुरी ग्राम जो आज के दिन में बांग्लादेश में है। और जाह्नवी देवी विशेष करके वो आई, क्योंकि जाह्नवी देवी सारे वैष्णव के सामने कहा वो आचार्य थी, तो इसलिए जब जाह्नवी देवी आई तो और सारे वैष्णव भी बहुत उनके साथ आए। और जाह्नवी देवी रहती थी खरदाह नाम के स्थान में, तो जाह्नवी देवी खरदाह से आई खेतुरी ग्राम, और साथ में अनेक अनेक वैष्णवों को लेकर जाह्नवी देवी साथ में आई खेतुरी ग्राम में। तो एक महान उत्सव का वहां पे पालन किया गया, साथ ही साथ कई सारे विग्रहों की स्थापना भी वहां पे हुई। जो सबसे पहले जो चैतन्य महाप्रभु के कई सारे जो मुख्य विग्रह है उनका स्थापना किन्होंने किया, नरोत्तमदास ठाकुर ने, राधा ब्रजमोहन जी, ऐसे कई सारे राधा कृष्ण के विग्रह भी थे और महाप्रभु के विग्रह भी थे। तो सबका स्थापना नरोत्तमदास ठाकुर ने वहां पे उस उत्सव में किया, और बहुत विशेष सब आयोजन किया गया था। तो जब उत्सव प्रारंभ हुआ तो नरोत्तमदास ठाकुर ने कीर्तन किया बहुत, आप जैसे जानते नरोत्तमदास ठाकुर बहुत सुंदर कीर्तन करते थे। गरनहाटी जो पद्धति है उसका शुरुआत नरोत्तमदास ठाकुर ने किया। आज भी जो हमारे गौड़ीय वैष्णव रीति में जो हम कीर्तन करते हैं पूरा वैसा तो नहीं है, फिर भी नरोत्तमदास ठाकुर के उसमें ही परंपरा में आता है हमारे जो कीर्तन शैली जो हम कीर्तन गाते हैं। तो नरोत्तमदास ठाकुर इतने महान भक्त थे और इतने सुंदर गाते थे, और जब नरोत्तमदास ठाकुर ने कीर्तन प्रारंभ किया तो सारे वैष्णव उसमें भाव विभोर हो गए, और कहते बहुत मधुर कीर्तन उन्होंने प्रारंभ किया। कई बार हम लोग बहुत जोर जोर मृदंग करताल बजाए कीर्तन करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, नरोत्तमदास ठाकुर ने बहुत मधुर कीर्तन, बहुत धीरे धीरे मधुर रूप से उन्होंने कीर्तन प्रारंभ किया, और कीर्तन और सारे वैष्णव इसमें मग्न हो गए कीर्तन में। और धीरे 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 कीर्तन और इंटेंस यानी और गंभीर होता गया, और तीव्रता से सब भक्त लोग कीर्तन करते गए। इस प्रकार कीर्तन चलता रहा, कई घंटों तक कीर्तन चलता रहा, और इतना वहां पे जो वहां का वातावरण था इतना कृष्ण प्रेममय हो गया कि अंत में क्या हुआ, स्वयं पंचतत्व वहां प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर, अद्वैत, श्रीवास पंडित, सर गोस्वामी, रूप सनातन, सारे जितने महाप्रभु के पार्षद सब वहां पे प्रकट हो गए। और सोचिए जब पंचतत्व स्वयं वहां प्रकट हो गए तो सारे वैष्णव की क्या हालत होगी, सब उनको देख के मूर्छित हो गए। सोचिए जाह्नवी देवी जो कि अपने प्रिय नित्यानंद प्रभु से विरह का अनुभव कर रही थी, जाह्नवी माता फिर से नित्यानंद प्रभु का दर्शन प्राप्त किए, तो जाह्नवी देवी बहुत प्रसन्न हो गई और सारे वैष्णव बहुत प्रसन्न हुए, स्वयं पंचतत्व प्रकट हुए। पहली बार जब प्रकट होने के बाद महाप्रभु सारे पार्षद एक साथ एक ही स्थान में सब प्रकट हुए और सारे वैष्णव को दर्शन दिए और साथ में सब नित्य कीर्तन किए सारे पंचतत्व और जोर जोर से कीर्तन चला था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल्पना कीजिए नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे हैं, उनसे अच्छा कौन गा सकता है, और नाच रहे स्वयं पंचतत्व और सारे गौर पार्षद, क्या दिव्य वातावरण होगा। तो सारे वैष्णव, तो समय का तो किसी को पता ही नहीं चला, कीर्तन ऐसे घंटों घंटों चलता रहा कीर्तन, और फिर अंत में फिर सारे जो पंचतत्व और जो प्रकट हुए तो वो फिर से अप्रकट हो गए। और एग्जैक्टली तो कितना समय मेरे को याद नहीं है, शायद कितने घंटे कीर्तन चला, 72 घंटे या गोपिंद ऐसा कुछ, बहुत लंबे समय तक इसे कीर्तन चलता रहा। और फिर अंत में बोले कि नहीं आगे और भी कार्यक्रम करना है, तो कीर्तन को जानो माता ने कीर्तन को विराम दिया, फिर सारे विग्रहों का और भी जो विग्रहों का स्थापना इत्यादि हुआ। और फिर अंत में कोई भी उत्सव के अंत में क्या अंत कैसे होता है, प्रसाद के द्वारा। तो उस समय खेतुरी ग्राम के उस समय प्रसाद स्वयं जाहनावा देवी ने अपने हाथों से बनाया। सोचिए ये एक उदाहरण है कि कैसे वैष्णव कितना सेवा करना चाहते हैं। जाहनावा माता कौन थी, सारे वैष्णवों की वो लीडर थी, महान आचार्य थी, लेकिन वो स्वयं अपने हाथों से उन्होंने रसोई किया, इतने हजारों हजारों भक्तों के लिए उन्हें स्वयं अपने हाथों से प्रसाद बनाया। सोचिए जाहनावा देवी जो प्रसाद बनाई हुई कितना स्वादिष्ट होगा। और केवल जाहनावा माता ने प्रसाद बनाया नहीं, रसोई नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रसाद का सेवा भी किया, मतलब जो वितरण करते हैं स्वयं जाहनावा माता ने प्रसाद का वितरण किया। तो पहले तो सारे वैष्णव प्रसाद लिए, फिर जो सेवक थे जो प्रसाद जो सर्वरसम कहते हैं जो प्रसाद वितरण करते हैं उनको ही जाहनावा माता अपने हाथों से प्रसाद वितरण किए, और सबसे अंत में जाके जाहनावा देवी ने प्रसाद स्वीकार किया। तो ये भी एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि जो आचार्य है वो अपने उदाहरण से सिखाते हैं। जैसे जाहनावा माता ये नहीं कि बस कोई और प्रसाद बना रहा है बस बैठ गए, नहीं, जाहनावा माता स्वयं अपने हाथों से प्रसाद बनाए, रसोई किए, वैष्णव को वितरण किए, और सबसे अंत में जाके वो प्रसाद स्वीकार किए। तो हम देख सकते हैं जाहनावा माता कितना कितने महान वैष्णव थी, और स्वयं नित्यानंद प्रभु की कांता, स्वयं अनंग मंजरी थी, लेकिन फिर भी वो शिक्षा दे रही है कैसे आचार्य को कैसे आचरण होना चाहिए। इस प्रकार ये महान उत्सव का पालन किया गया। और कहते हैं इस उत्सव के द्वारा सारी गौड़ी उत्सव की जो सभा है उसमें एक नया प्राण मानो आ गया, क्योंकि सारे बहुत दुखी थे महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद, लेकिन जो उत्सव के द्वारा सब में एक नई प्रेरणा हो गई। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं उत्सव बहुत आवश्यक है, कि जो फेस्ट जैसे हमारे यहाँ इस्कॉन में हर साल मायापुर में गौर पूर्णिमा उत्सव होता है, यहाँ पे भी कार्तिक में उत्सव होता है, तो जाहिर जब वैष्णव एक साथ आते हैं तो सारे सबके हृदय में एक नई प्रेरणा जगती है, सब बहुत उत्साहित हो जाते हैं। तो इस उत्सव के बाद सारे गौड़ीय वैष्णव बहुत उत्साहित हो गए और फिर से वो प्रचार करने लग गए। और इतना ही नहीं, जो कुछ मतभेद आ गए थे, क्योंकि ऐसा होता है कि ये भौतिक प्रकृति का नियम है कि जैसे कोई भी आचार्य जाने के बाद आपस में कुछ मतभेद इत्यादि सृष्टि हो जाती है, लेकिन इस महोत्सव में वो जितने मतभेद इत्यादि या कुछ आपस संप्रदाय कुछ सिद्धांत का जन्म हुआ तो वो सबका भी नष्ट हो गया। तो इस प्रकार वैष्णव समाज फिर से एकजुट होकर प्रचार में लग गए। तो ये खेतुरी ग्राम उत्सव था। और अंत में जाहनावा देवी कहते हैं वो गोपीनाथ जी के विग्रह जो वृंदावन में उस समय थे राधा गोपीनाथ जी, कहते गोपीनाथ जी के विग्रह में वो प्रवेश कर गए। आज भी गोपीनाथ जी के मंदिर में आप देखेंगे दो विग्रह हैं, राधा रानी और अनंग मंजरी, क्योंकि अनंग मंजरी स्वयं जाहनावा देवी हैं। तो अंत में जाहनावा देवी कहते हैं गोपीनाथ जी के शरीर में प्रवेश कर गए, क्योंकि जाहनावा देवी की भौतिक जीव शरीर नहीं था उनका, वो स्वयं आध्यात्मिक रूप में थी जाहनावा देवी। अब देखिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तो ये सब शरीर का त्याग नहीं, और जितने सारे पंचतत्व भी हम नहीं सुनते कि शरीर त्याग की सब, क्योंकि सब दिव्य शरीर में थे, आध्यात्मिक शरीर में सब थे। और तीसरा जो आज हम जिसके बारे में मधु पंडित जी का तिरुभाव है आज, तो मधु पंडित जी किनके शिष्य थे, वो गदाधर पंडित के शिष्य थे मधु पंडित जी। जैसा कि आप जानते हैं कि बज्रनाथ जो भगवान कृष्ण के जो पड़ पोते थे, उन्होंने तीन मुख्य विग्रह का स्थापना किया था यहाँ पर वृंदावन में, गोविंद जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी। और काल के अनुसार वो सब विग्रह सब लुप्त हो गए थे, तो उसको फिर एक एक करके सारे वैष्णवाचार्यों ने उसको ढूंढा। गोविंद जी के विग्रह कौन ढूंढे? रूप गोस्वामी। सबसे पहले सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुए कौन? मदन मोहन जी मथुरा में। अद्वैताचार्य सबसे पहले उनको ढूंढे अद्वैतवट में, और फिर अद्वैताचार्य जब वापस चल गए तो वो एक ब्राह्मण के हाथ दे दिए मथुरा में, और फिर सनातन गोस्वामी के स्वप्न में मदन मोहन जी आए और सनातन गोस्वामी उनको लेके आए अपने साथ, मदन मोहन जी की स्थापना की। और रूप गोस्वामी को गोविंद जी प्राप्त हुए एक टीला में, गोविंद जी एक गाय जाके वहां पे डेली दूध दिया करता था, तो उस प्रकार रूप गोस्वामी प्राप्त किए गोविंद जी को। कहते हैं स्वयं गोविंद जी आके उनको बताए एक ग्वाले के रूप में कि मैं इधर पे हूं। तो रूप गोस्वामी किसको प्रकट कराए? गोविंद जी को। और लेकिन गोपीनाथ जी प्रकट नहीं हुए थे, तो गोपीनाथ जी को प्रकट कराए मधुपंडित दास जी। तो कहते हैं मधुपंडित दास जी की बहुत अत्यंत लालसा थी भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए, जो हम कहते हैं ना कि तत्र लौल्यम अपि एक मूल्यम, तो उनके हृदय बहुत लौल्यम था कि कैसे वो भगवान कृष्ण का दर्शन करेंगे। तो उसी लौल्य के परिणाम से उनको गोपीनाथ जी दर्शन दिए। तो भक्ति रत्नाकर में वर्णन है कि गोपीनाथ जी उनको प्राप्त हुए इसी वंशीवट में, क्योंकि वही नित्य स्थान है। जो गोपीनाथ जी का प्रणाम मंत्र क्या है? गोपीनाथ जी का प्रणाम मंत्र श्रीमन रास रसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणु स्मरे गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुना। तो गोपीनाथ जी प्रकट हुए वंशीवट में, और बहुत ही सुंदर रूप गोपीनाथ जी का, जैसा आप जानते हैं कि गोपीनाथ जी है प्रयोजन विग्रह, जैसे मदन मोहन जी कहते हैं हम संबंध विग्रह, गोविंद जी अभिदेव विग्रह, लेकिन गोपीनाथ है प्रयोजन विग्रह। तो बहुत सुंदर रूप है गोपीनाथ जी का। तो जो मूल मूर्ति है गोपीनाथ जी की, मूल विग्रह, वो तो जयपुर में है, लेकिन फिर भी यहाँ वृंदावन में उनकी प्रतिभू मूर्ति है, वो भी बहुत सुंदर है वृंदावन में राधा गोपीनाथ जी। और ऐसा भी कहा गया है भक्ति रत्नाकर में कि मधुपंडित जी ने श्रीनिवास आचार्य को गोपीनाथ जी का आशीर्वाद प्रदान किया था, श्रीनिवास नरोत्तम और श्यामानंद, क्योंकि आप जानते हैं जब ये तीन जो थे नरोत्तम श्यामानंद और श्रीनिवास आचार्य, उनको आदेश मिला था क्या करने के लिए? प्रचार करने के लिए। तो वृंदावन से जब आ रहे थे तो सारे वैष्णवों से वो आशीर्वाद मांगे, तो मधुपंडित जी के पास भी आए और मधुपंडित दास जी ने उन्हें गोपीनाथ जी का माला अर्पण किया और इस प्रकार उनको आशीर्वाद दिए। और कहा जाता है गोलोक वृंदावन में मधुपंडित जी मंडली सखी के रूप में, वो चंपकलता के सखी के मंडली में है और सेवा करते हैं, और मधुपंडित जी की समाधि उसी राधा गोपीनाथ जी के मंदिर के उसमें ही है। तो आज हम प्रार्थना कर सकते हैं मधुपंडित गोस्वामी जी को भी कि हमें कृपा करें, और विशेष करके जाहनावा देवी के चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से हमें नित्यानंद प्रभु कृपा प्राप्त होगी, नित्यानंद प्रभु कृपा से हमें गौरांग महाप्रभु कृपा प्राप्त होगी। तो जाहनावा माता को हमें प्रणाम करना चाहिए, उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए, और सीता देवी का आज आविर्भाव है और हम सीता देवी से भी प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो और कोई कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? कुछ टीका टिप्पणी और कुछ, या कोई प्रश्न है? गोपिंदर प्रभु कुछ कहना चाहिए, रमाकांत प्रभु कुछ? हाँ प्रभु। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद्भागवतम की जय, चैतन्य चेतामृत की जय। हरे कृष्ण।